राधे
जगद्गुरु कृपालु परिषद प्रेजेंटिंग चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ पॉडकास्ट फॉर अ बेटर एग्जिस्टेंस।
भगवान की स्वरूप शक्ति के अंतर्गत होता जीव तो भगवान के गुणों से युक्त होता, नियामक होता, सर्वव्यापक होता, सर्वज्ञ होता, सर्वदृष्टा होता, सर्वसाक्षी होता, सर्वसुरित होता, सर्वेश्वर होता, सर्वशक्तिमान होता। ये नहीं है तो इसका मतलब स्वरूप शक्ति के अंतर्भुक्त भी नहीं है लेकिन चेतन है इसलिए जड़ माया शक्ति के भी अंतर्भुक्त नहीं है इसलिए इसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। और दूसरा लक्षण जो मैं का है वो क्या है, वो भगवान का दास है। वाह, सीधी सीधी बात, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दास भूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमं तस्तेदं शरीरम। ये जड़ जगत भी उसका शरीर है, चेतन जीव भी उसका शरीर है, वो शरीरी है, ये शरीर है। तो शरीर और शरीरी आत्मा को मिला के एक भी हम कह सकते हैं। आज रमेश कलकत्ता गया तो इसका मतलब बॉडी भी गया है, वो भी गया, ठीक है, समझ गए समझ गए। अब आज रमेश मर गया, अब बॉडी नहीं मरा, वो गया, आत्मा निकला, ये भी समझ गए। बड़े समझदार है हम लोग, संसार में सब बात समझ जाते हैं, भगवान के यहां कहते हैं ये कैसे होगा। आश्चर्य तो भगवान के हम नित्य दास हैं। दास भूतास तस्सर्वे जात्मनः परमात्मनः। नारद ब्रांचरात्र भी यही कहता है, सब जीव उसके दास हैं और जो भी जिसकी अंश होता है उसका दास होता है। मोटी अकल में समझ लो, जिसका जो अंश होता है उसका वो दास होता है। एक वृक्ष के जो ये पत्ते वगैरह हैं उसके दास हैं, अंश हैं, इसलिए वो दासता करते हैं, वृक्ष को खुराक पहुंचाते रहते हैं। वो पत्तों से वृक्ष को खुराक मिलती है, यानी वो सब उसकी सेवा करते हैं, उनका एक ही काम है, दास का दूसरा काम ही नहीं कोई। श्रीमन्नारायण स्वामी, एक भगवान स्वामी है, बाकी सब जीव भी दास है, माया तो दासी है ही है, सो दासी रघुवीर की। तो ओरिजिनल हमारा तटस्थ लक्षण है कि हम भगवान के दास हैं। दासोहम कौशलेन्द्रस्य। हम लोग अपने को स्वामी मानने लगे, बस गड़बड़ हो गई। और स्वामी भी मानते हैं किसके, संसार के। ये हमारा नौकर है, हम इसके स्वामी हैं। ये हमारा बेटा है, हम इसके स्वामी हैं। ये हमारी बीबी है, हम इसके स्वामी हैं। स्वामी और तुम, सबका स्वामी एक है। तुम कहां से बीच में टपक पड़े स्वामी बनने के लिए। सब दास हैं। तो ये इतनी तीन बात समझने की है मैं के बारे में। तटस्थ शक्ति है और भगवान से भिन्न भी है और भगवान के साथ अभिन्न संबंध भी है। ये दो तो स्वरूप लक्षण और भगवान का नित्य दास है, ये तटस्थ लक्षण हुआ। ऐसा कोई मैं हूं। वो मैं अनादिकाल से हूं और सदा रहूंगा। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था या आगे नहीं रहूंगा। जो वस्तु वर्तमान में है वो पहले भी थी, आगे भी रहेगी। यहां तक कि यह संसार जो आप लोग देखते हैं, जिसको नश्वर नश्वर क्षण भंगुर कहते हैं, ये तो दिख रहा है सामने, हाँ, ये पहले भी था, हाँ, आगे भी रहेगा, हाँ, है इम्पॉसिबल, ये तो क्षण भंगुर है। अरे क्षण भंगुर नहीं है रे, सूर्या चंद्रम सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चांतरिक्षमथो स्वः। जैसे पहले सृष्टि थी उसी प्रकार की सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, फिर जैसे पहले थी, ऐसी प्रकार चक्कर लगा रहा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वर्तमान में संसार है, आगे नहीं रहेगा, आगे भी आएगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है भगवान की जो समाप्त हो जाए। न भगवान समाप्त होगा, न उसकी कोई शक्ति समाप्त होगी। जीव भी उसकी शक्ति, माया भी उसकी शक्ति, और स्वरूप शक्ति भी उसकी शक्ति, और स्वरूप शक्ति से ही माया शक्ति वर्क करती है, स्वरूप शक्ति से ही जीव शक्ति वर्क करती है। स्वरूप शक्ति ही मेन शक्ति है भगवान की, जिसके बल पर भगवान संसार में व्याप्त है और निर्लेप है। करोड़ों मर्डर कर रहे हैं फिर भी निर्लेप है, हम कुछ नहीं करते। सृष्टि कर रहे हैं, नहीं मैं कुछ नहीं करता, औरता कुछ नहीं करता मैं, अकर्ता मेरा नाम वेद में है, अनंतश्चात्मा विश्व रूपो य कर्ता। ये सृष्टि कौन करता है? मैं ही करता हूं। फिर तुम अकर्ता कैसे हो? दोनों ये स्वरूप शक्ति का कमाल है, सर्वभुक्त और अभोक्ता। वेद में एक मंत्र है बड़ा सुंदर, द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखत्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन अन्यो अभिचा कशीति। हमारे हृदय में दो पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। एक पक्षी तो कर्म करता है और फल भोगता है, दूसरा पक्षी केवल दृष्टा बनकर के देखता रहता है, परमात्मा। हाँ, लेकिन एक वेद मंत्र में यह भी है कि दो पक्षी हैं, दोनों कर्म करते हैं, दोनों कर्म करते हैं, दोनों फल भोगते हैं। यानी जीवात्मा भी वर्कर है, परमात्मा भी वर्कर है, उसको भी साथ में ले लिया। तो फिर प्रश्न आया, क्यों जी परमात्मा भी कर्म करता है, जीव भी कर्म करता है, तो दो वर्कर हो जाएंगे तो बड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि जीव अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। दोनों कैसे कह दिया आपने? परमात्मा केवल पावर देता है, तब जीवात्मा कर्म करता है, इसलिए परमात्मा को कर्ता मान लिया। एक प्रयोज्य करता, एक प्रयोजक करता। परात्म तच्छ्रुते है, एक ब्रह्म सूत्र है जिसका भाष्य किया गया है कि भगवान ही कर्म कराता है। अनेक वेद मंत्र भी है, सैव साधु कर्म कारयति, अच्छा कर्म भी वही कराता है, खराब कर्म भी वही कराता है। ये कराता है जो लिखा गया शास्त्रों वेदों में, हम भ्रम में हो जाते हैं कि हमसे जो कुछ हो रहा है वही करा रहा है। हमारी छुट्टी। वो कराता है इसलिए बोला जाता है कि वो हमको कर्म करने की शक्ति देता है। हम क्या कर्म करें ये हमारे ऊपर है। स्वतंत्र क्रियमाणे भाई, ये बिजली की जो पावर है ये पावर हाउस ने हमको दे दी, अब इसका यूज हम कैसे करें ये हमारे हाथ में है। लाइट जलावें, पंखा चलावें, एसी चलावें या तार पकड़ के मर जाएं, ये सब हमारे हाथ में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पावर लाइट जल रही है किससे, पावर हाउस से। ये ठंडा कमरा कैसे है, पावर हाउस से। ये आदमी कैसे मर गया, पावर हाउस से। यानी भगवान करता है ये भी हम कह सकते हैं और हम तो करता ही है। तो भगवान जो है वो एक प्रकार से पावर देने वाली शक्ति है, इसलिए उसको हम कर्ता भी बोल देते हैं। वस्तुतः कर्ता जीव ही है। तो ऐसा एक कोई पदार्थ मैं है, वो क्या चाहता है ये फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक अवतारी एक अवतार, अवतारी या अवतारिणी, एक स्वरूप ये और एक अवतार। तो किशोरी जी अवतारिणी हैं और ठाकुर जी अवतार हैं। ये बड़ा सूक्ष्म अंतर है, रसिक लोग जानते हैं। अवतार जो होता है वो किसी का होता है, किसी का अवतार, यानी उसका ओरिजिनल रूप कोई और होता है, उसका अवतार कहा जाता है। वो जितने भी अवतार हैं सब श्री कृष्ण के अवतार कहे जाते हैं। और श्री कृष्ण जो है वो किशोरी जी के अवतार हैं। और अवतार में शक्तियों का तारतम्य होता है। संधिनी शक्ति, संबित शक्ति, लादिनी शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, माधुर्य शक्ति, अनेक प्रकार की शक्तियां हैं भगवान की। तो जो शक्तियां माधुर्य रहित हैं, भगवत्ता संबंधी हैं, वो सब श्री कृष्ण के पास हैं। और जो माधुर्य शक्ति है, लादिनी शक्ति, उसकी अध्यक्षा है किशोरी जी। राधा तत्व जिसे कहते हैं आप लोग, तो प्रेम तत्व का जो ओरिजिनल रूप है वो राधा है। राधा से प्रेम प्रकट होता है, फिर वो श्री कृष्ण के पास जाता है, फिर श्री कृष्ण के पास से और अवतारों के पास जाता है, संतों के पास जाता है। लेकिन उसका जो केंद्र है, मेन पावर हाउस, वो किशोरी जी हैं। तो किशोरी जी प्रेम का ओरिजिनल रूप, वास्तविक, और उनके अवतार हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के पास जो प्रेम है वही प्रेम किशोरी जी के पास है, लेकिन श्री कृष्ण के पास जो प्रेम है वो किशोरी जी का दिया हुआ है। प्रेम छोटा बड़ा का सवाल नहीं है। जैसे किसी महापुरुष के पास प्रेम है, संत के पास, महात्मा के पास, वो भगवान से कम आनंद उसको नहीं मिलता। जो आनंद श्री कृष्ण के पास है वही आनंद उसको प्राप्त करने वाले जीव को भी मिलता है, 100% कम बेश नहीं। लेकिन ये जीव के पास प्रेम कहां से आएगा, वो दिया उसके गुरु ने, गुरु को उसके गुरु ने दिया, उसको उसके गुरु ने दिया। लेकिन वही प्रेम है जो किशोरी जी के पास है, जिसको उन्होंने ठाकुर जी को पहले दिया। एक दिन दिया ऐसा नहीं सदा से दे रखा है, ऐसा मत अर्थ लगा लेना कि उसके पहले तो श्री कृष्ण ठन ठन पाल मदन गोपाल रहे होंगे, ऐसा नहीं। अनादिकाल से सनातन प्रेम दान है किशोरी जी का ठाकुर जी को, इसलिए किशोरी जी अवतारिणी है प्रेम तत्व की और ठाकुर जी अवतार है प्रेम तत्व के, इतना बड़ा अंतर है। यानी किशोरी जी के द्वारा प्रदत्त प्रेम ठाकुर जी के पास आया, इसलिए नंबर एक प्रेम की जो अधिष्ठात्री देवी है वो राधा है। राधा शब्द का अर्थ ही यह है, प्रेमेर परम सार महाभाव जानी से महाभाव रूप राधा ठाकुरानी। प्रेम का जो अंतिम रस है महाभाव, उसी को राधा कहते हैं। वो प्रेम दिव्य होता है, चेतन होता है। हम लोग जैसे कहीं मन का अटैचमेंट करते हैं माँ में, बाप में, बीबी में, पति में, ये प्रेम ओम नहीं है, ये तो अटैचमेंट है, मन का लगाव है, इसको प्रेम नहीं कहते। ये प्रेम तो पहले आप भगवान से करेंगे अवश्य, तब अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण की शुद्धि के बाद वो गुरु आपको प्रेम देगा, वो प्रेम जो किशोरी जी का स्वरूप है, जो ठाकुर जी के पास है, वो प्रेम आपको दिया जाएगा। वो अलौकिक दिव्य शक्ति है उस प्रेम का नाम, उसके अंडर में श्री कृष्ण रहते हैं। वो ऐसा होता है, ऐसी पावर है कि सारी पावर ठाकुर जी की गायब हो जाती है। छछिया भर छाछ पे नाच नचावत, गोपियों के पास वही प्रेम था। वो हुआ करें भगवान अपने घर के, प्रेम में पावर है कि वो ऐश्वर्य को मिटा देता है, भगवान की भगवत्ता को मिटा देता है, भुला देता है। ठाकुर जी को याद ही नहीं रहता मैं भगवान भी हूं। वो ठीक अपने को उसी प्रकार महसूस करते हैं जैसे संसारी बच्चे। माँ डंडा दिखाती है तो ठाकुर जी कांपते हैं, रोते हैं, फैक्ट में डरते हैं। ध्यान दो इस पॉइंट पर, ऐसा नहीं कि एक्टिंग करते हैं जी वो तो भगवान है, उनसे तो जमराज कांपता है, वो एक बुढ़िया के डंडे से क्या डरेंगे, ऐसा नहीं। उनको भगवत्ता का विस्मरण करा देता है प्रेम शक्ति, इतनी बड़ी है। भगवत्ता भूल जाती है, अगर भगवत्ता का भान रहे तो ठाकुर जी को आनंद ही कुछ न मिले। जैसे संसार में कोई पिक्चर में एक्टिंग करता है, हीरो बनता है, हीरोइन बनता है, सम्राट बनता है, तो सम्राट बनने की जो खुशी है वो उसको नहीं होती। वो तो जानता है अरे मैं 15 मिनट के लिए सम्राट बन गया हूं, उसके बाद तो फटीचर वैसे रहूंगा, तो भीतर से उसको खुशी नहीं हो सकती कि मैं सम्राट हो गया, एक्टिंग किया करे। तो अगर भगवान को ये भान रहे कि मैं भगवान हूं, तो यशोदा मैया के डंडे के डर से आंसू कैसे आएंगे, फिर वो सुख ही खत्म हो जाएगा यशोदा मैया को। इसलिए प्रेम शक्ति इतनी बड़ी है, सबसे बड़ी, कि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति, भगवत्ता की शक्ति, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य शशः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणं भगैतीरणा, ये 6 शक्तियां हैं ऐश्वर्य की। अनलिमिटेड लिमिट में जिसके पास हो उसको भगवान कहते हैं। ये 6 शक्तियां उस प्रेमा शक्ति के आगे सरेंडर कर देती हैं, तो भगवान को विस्मरण हो जाता है मैं कौन हूं। और यही प्रेमा शक्ति महापुरुष के पास आती है तो महापुरुष को भी विस्मरण हो जाता है कि मैं एक नगण्य तुच्छ जीव हूं, वो भी भूल जाता है अपने को, और भगवान को अपने बराबर मानता है या तो अपने से छोटा मानता है। तभी तो ब्रज वाले गाली दिया करते थे, ये गाली कैसे निकलेगी, अरे भगवान भगवान छोड़ो, अगर अपने से बड़ा रिस्पेक्टेड भी मान ले तो उसको गाली कैसे देंगे हम लोग। फिर तो हमको पागल करार दे दिया जाएगा संसार में। देखो अपने बाप को गाली दे रहा है, अपने भाई को गाली दे रहा है। लेकिन वो भूल जाती है गोपियां, वो प्रेमा शक्ति उनकी उनका जीवत्व भुला देती है, वही प्रेमा शक्ति भगवान की भगवत्ता भुला देती है। तो जब भगवान भगवत्ता भूले, जीव जीवत्व भूले, तब जीव ब्रह्म का मिलन होता है, तब रस प्रकट होता है। इसलिए राधा तत्व अवतारिणी है और ठाकुर जी अवतार है, ये आशय है इस लाइन का। महिमा जो होती है माने इंपॉर्टेंस, एक रुपए का नोट का महत्व क्या है, महिमा क्या है, 100 रुपए के नोट की क्या महिमा है, हीरे की क्या महिमा है, सोने की क्या महिमा है, चांदी की, हर एक की महिमा होती है। अब उस महिमा को बुद्धि नापती है, तौलती है, जानती है। तो विश्व में जितनी महिमाएं हैं उनको बुद्धि जान सकती है। हर एक की बुद्धि नहीं, जिस लेवल की महिमा को जानना हो उस लेवल की बुद्धि चाहिए। जैसे एक अंगूठी में हीरा लगा है, अब एक ने देखा अंगूठी है, चमक रही है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक जौहरी ने देखा, उसने कहा है 2 लाख का है, 4 लाख का है, 10 लाख का हीरा है। हाँ, आप इतने छोटे से आदमी, आपको कहां मिली अंगूठी। वो उसकी महिमा को जान रहा है, जो पहने हैं उसको ऐसे पड़ी हुई अंगूठी मिल गई थी वो नहीं जानता। तो जिसकी महिमा जानना हो उसके बराबर की बुद्धि होनी चाहिए। दूसरा रीजन, हमारी बुद्धि एक साइड की बात का निश्चय करती है। आंख से दिखाई पड़ता है, नहीं, ये गलत है वाक्य। फिर आंख ही से दिखाई पड़ता है, ये वाक्य सही है। कान ही से सुनाई पड़ता है, ये वाक्य सही है। ही लगाओ ही, यानी आंख सुनने का काम नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल। अगर आप कहीं सुने कि एक आदमी कान से देखता है तुम्हारा इसको ढीला है कि उसका, कोई नहीं मानेगा ना, क्योंकि इम्पॉसिबल है। जो चीज इम्पॉसिबल होती है उसको बुद्धि एडमिट नहीं करती। तो भगवान की महिमा को जानने की बात जब आई तो बुद्धि ने कहा यो बुद्धे परतस्तु सहा। बुद्धि माया की बनी है, ये बुद्धि की जननी माया है। अंतःकरण जो है ये माया से बनता है, जैसे शरीर माया से बनता है ऐसे ही मन भी माया से बनता है। ये भगवान का अंश नहीं, दिव्य नहीं, चिन्मय नहीं, मटीरियल है। तो मटीरियल मैटर से स्पिरिचुअल तत्व की महिमा जानी ही नहीं जा सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता, उसका प्रयास करने ही फुल मैट का काम है। जरा हम देखे तो क्या देखेगा, अरे क्या देखेगा। जब तू दुनिया में देखते हो तो बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियरिंग का काम कुछ नहीं जानता, जीरो है, कुछ नहीं जानता बेचारा। एक फ्यूज उड़ गया उसके घर में, इतना बड़ा डॉक्टर हल्ला मचाता है, अरे कहां गया नौकर, बुलाओ उसको ठीक करे। अरे तुम इतने बड़े ऑपरेशन करते हो मस्तिष्क का अरे तो वो अलग बात है भाई, मैं ये काम नहीं जानता। उसी प्रकार संसार की कितनी ही बड़ी बुद्धि हो, बृहस्पति से भी अनंत गुना बड़ी बुद्धि की अथॉरिटी है बृहस्पति, धन की अथॉरिटी है कुबेर, ऐश्वर्य की अथॉरिटी है इंद्र, सम्मान की अथॉरिटी है गणेश जी। तो इसी प्रकार बुद्धि की जो अंतिम सीमा है वो बृहस्पति की है। लेकिन भगवान के मामले में वो जीरो, एक बटे सौ नहीं, जीरो बटे सौ। अब सुनने वाला पूछेगा क्यों, ऐसी क्या बात है भगवान को जो समझ में नहीं आएगी, ऐसी क्या बात है संत की जो समझ में नहीं आएगी। ऐसा हम लोग सोचते हैं अपनी बुद्धि में, अरे एक बात भी समझ में नहीं आनी चाहिए। अगर आप कहते हैं मुख महात्मा की सब बात समझ में आती है, एक नहीं आती, आश्चर्य है कि आप सब समझ गए एक भी नहीं समझना चाहिए आपको। ये लोग दूसरी गवर्नमेंट के हैं, वहां तुम्हारी बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है। और अगर जान गए सचमुच कि ये भगवत कृपा गुरु कृपा की शक्ति है जो जान गए, अन्यथा तुम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन, सोई जानई जे ही देहु जनाई। जिसको पावर दे दे, अपनी बुद्धि दे दे, वो जान सकता है। मोटी अकल की बात गधे की अकल से समझो कि भगवान की बात भगवान की बुद्धि से ही समझ में आएगी, वो तो है ही नहीं। दोबारा आराम करो, कुछ तब तक मत लगाओ बुद्धि, वहां सरेंडर करो बुद्धि की, मान लो चुपचाप और साधना करो, साधना करके वो बुद्धि प्राप्त करो, तब समझ में आएगा। अरे तो भी साहब क्यों समझ में नहीं आएगा, ये तो बताइए। हाँ तो सुन लो, वो बता रहा है, भगवान से ही कह रहा है, दूसरे से नहीं। धन्य हो महाराज, ऐसे धन्य हो महाराज, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। ठाकुर जी मुस्कुराए, क्या बात है रे महाराज, हमारे ऊपर क्यों बरस पड़ रहा है? महाराज मैंने सब वेदों को पढ़ा है, आपकी वाणी है वेद, आपकी वाणी है, आपके मुख से निकला है वेद। हाँ हाँ मेरी वाणी है। तो चारों वेद कहते हैं भगवान निराकार है। हाँ हाँ कहते हैं, तो क्या हुआ, तो आप निराकार कैसे हो गए? वो निराकार वाली ई कहां चली गई? नी, नी की जगह ना हो गया तो निराकार हो गए, मनुष्य के आकार के। तो निराकार ब्रह्म भी आप है और निराकार भी है, ये इम्पॉसिबल। हमारे यहां संसार में ऐसा नहीं होता। अगर निराकार है तो बस निराकार है, और अगर निराकार है तो निराकार नहीं है। दोनों बात सही कैसे है आप में? इसलिए आपकी महिमा परंपार है। अनेक उदाहरण देता है आगे कि इन इन कारणों से हम कह रहे हैं कि आपकी महिमा अपरंपार है, यानी बुद्धि से परे है। हाँ पॉइंट दे रहा है कि महाराज सारे वेदों में बताया गया है कि अमृतस्वय पुत्राः, जितने जीव हैं ये सब हमारे बेटे हैं, हम उनके बाप। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति, वेद कह रहा है वही जीव की माँ है, वही जीव के बाप है, वही जीव के भाई है, वही जीव के सुहृत है, सब कुछ वही है। जीव का नाता और किसी जीव से है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। भगवान आपने स्वयं वेद में कहा ना कि मैं सबका बाप हूं। ये तो वायमान भूतानि जायन्ते, सब पैदा होते हैं मुझसे। हाँ हाँ ठीक है, मैं बाप हुई, इसमें क्या शक है। यह बात अलग है कि बाप बेटे की उम्र एक है। ध्यान दो, संसार में ऐसा नहीं होता ना, परंपार बात है। भगवान भी अनादि, जीव भी अनादि। भगवान को भी आज कहा वेद ने और जीव को भी आज कहा वेद ने। ज्ञा ज्ञौ द्वाव अजौ, ये दोनों आज है। यानी एक बात में तो हम भगवान से कंपटीशन कर ही सकते हैं। भगवान ये नहीं कह सकते हैं क्या बकता है मुझसे पैदा हुआ मेरे यागे। संसार में हम लोग कहते हैं ना, बेटा कितने काबिल हो जाए, क्या चिल्ल बिल्ल कर रहा है, मुझसे पैदा हुआ मुझे ही पढ़ा रहा। सीनियरिटी का एडवांटेज संसार में चलता है। ये भगवान नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान भी अनादि, हम भी अनादि। हम भगवान के बेटे हैं, लेकिन भगवान के बेटे एक दिन बने ऐसा नहीं। सदा से वो हमारे बाप, सदा से हम उनके बेटे। समझ में आती है बात? नहीं आएगी, अपरंपार बात है। ऐसा कैसा बाप जो बेटे की उम्र के बराबर हो जी? हाँ, ये तो होली का मजाक लगता है। अच्छा ठीक है, चलो भाई अनादि बाप सही। तो हमारे आप बाप है? हाँ हाँ है। सब वेद कह रहे हैं, हाँ ठीक कह रहे हैं वेद, मैं तुम्हारा पिता हूं, फैक्ट है। तुम ना मानो तुम्हारी भूल है, तुम आपस में ही बाप बेटे बन गए। जीव जीव का बाप, जीव जीव का बेटा, जीव जीव का भाई है। जीव जीव का कैसे हो जाएगा बाप बेटा? अगर आप कहते हैं हम हैं, सिद्ध करो। सिद्ध क्या करें? हमारी मां से पूछ लो, बाप से पूछ लो। अरे मां बाप कितने बनाए तुमने, जरा बताओ तो। तुम्हारे कितने बाप हो चुके अब तक तुम्हारी उम्र में? यानी अनादिकाल से हम जीव है ना, तो अनादिकाल से हमने अब तक अनंत बाप बनाए। अनंत, लाख करोड़ नहीं। अरे मरेंगे फिर पैदा होंगे किसी बाप के, फिर मरेंगे फिर पैदा होंगे किसी बाप के द्वारा। वो कुत्ते की योनि में जाए, गधे में जाए, जहां भी जाए कोई ना कोई बाप तो होगा। ये परिवर्तनशील बाप, माँ बेटे स्त्री पति सब बदलते रहते हैं हर जन्म में। ये बाप कहां हुए तुम्हारे? ये तो बदलने वाले हैं, ये तो मन कल्पित है। जैसे संसार में कोई किसी के बच्चे को गोद ले लेता है लीगल और कहता है हमारा बेटा है। अच्छा इसकी माँ कौन है? हमारी बीबी, तुम्हारी बीबी के पेट से पैदा हुआ है। नहीं सो तो नहीं, फिर कैसे तुम इसके बाप हो? अरे वो कानूनी कार्रवाई कर ली है मैंने। अरे कानून से बाप हो गए तुम? ऐसे को बाप नहीं कहते, ये तो कल्पित हुआ, माना हुआ हुआ। तो इसलिए मैं तुम्हारा असली बाप हूं। यानी शरीर का बाप बदलता रहता है, क्योंकि शरीर बदलता रहता है, आत्मा नहीं बदलता। वो नहीं मरता जीता, सदा एक सा है, उसका बाप भी एक सा है, वो नहीं बदलता। इसलिए तुम सब हमारे बेटे हो, ये फैक्ट है, अच्छी बात है। अब ये बताओ तुम, दूसरा क्वेश्चन कि नंद जी तुम्हारे कौन लगते हैं? नंद जी, नंद जी ब्रज वाले, वेदों में शास्त्रों में पुराणों में सब जगह तुमको नंद कुमार कहा गया। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, सब जगह तुमको नंद का बालक कहा गया, पुत्र कहा गया। तो तुम नंद के पुत्र हो कि नहीं? अगर नहीं तो बताओ नंद तुम्हारे कौन लगते हैं? ठाकुर जी ने सिर नीचे कर लिया। कृपालु ने कहा मैं समझ गया परंपार है।
राधे।
थैंक यू फॉर जॉइनिंग जगत गुरु कृपालु परिषद पॉडकास्ट।